जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयुयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहूणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करी मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज आभव तरुणो मूल एक जानो मिथ्या भाव तेने करि निर्मूलवे करिए मोक्ष उपाव।
आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र यहां विराजमान है। अपने को 9 तक लेना, 9:15 तक, 1 घंटा स्पष्ट हो जाए ना दिमाग में, तो प्लानिंग वैसी होती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के विषय वस्तु और उसकी आवश्यकता यूटिलिटी, उससे अपना मुमुक्षु समाज अपरिचित नहीं है। समय सार ग्रंथ के बाद में यदि कोई दिगंबर शास्त्र पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में आया हो तो उसके बाद सबसे पहले ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही आया। जैसा कि उनके जीवन चरित्र में अपन सबने अनेक बार देखा है, पढ़ा है, सम्मत 1978 में उनके हाथ में समयसार ग्रंथ आया और सम्मत 1982 उसके 4 वर्ष बाद उनके करकमलों में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ आया। कहते हैं कि उसका स्वाध्याय इतनी गहराई से करते थे, छत पर चांदनी रात में जाकर के बैठ के उसका स्वाध्याय करते थे और 7वां अध्याय तो उन्होंने हाथ से लिख लिया या लिखवा लिया, जो भी हो उसको साथ में रखते थे हमेशा, वो सदा साथ में रहे, ये प्रयोजन उनका था। फिर जब सोनगढ़ में प्रतिवर्ष शिविर आयोजन हुए, शिविरों की श्रृंखला प्रारंभ हुई, तो बापूजी रामजी भाई के द्वारा हर वर्ष या तो इस ग्रंथ का 7वां अधिकार या इस ग्रंथ का 9वां अधिकार, 9वें अधिकार में पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति और 7वें अधिकार में 7 तत्व संबंधी भूल, ये 2 प्रकरण वो हमेशा लिया करते थे। मुझे 12 वर्षों तक गुरुदेव की हाजिरी में प्रतिवर्ष सोनगढ़ जाके और रामजी भाई के द्वारा, खेमचंद भाई के द्वारा उनके वर्ग में बैठने का अवसर मिला। गुरुदेव से तो सीधी बात नहीं कर पाते थे, उतना समझ लो समझ में भी नहीं आता था, बुद्धि भी नहीं थी, उम्र भी बहुत कम थी, तो गुरुदेव से बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो जो भी प्रवचनों में शंका उत्पन्न होवे उसका समाधान हमें तो एकमात्र रामजी भाई बापू जी से प्राप्त होता था। ऐसा ये मार्मिक अधिकार 7वां अधिकार है। एक बार की बात है, मैं सोनगढ़ के शिविर के पहले ही वहां पहुंच गया था। दो चार दिन बाद शिविर प्रारंभ होने वाला था तो ये चर्चा हुई कि विषय क्या लेना चाहिए, तो गुरुदेव श्री ने संकेत मात्र किया कि सातवां अधिकार तो ऐसा है कि उसमें से जितना निकालो उतना ही माल निकलता है, बस इतना बोला। तो सब लोग समझ गए कि गुरुदेव का संकेत है कि सातवां अधिकार ही शिविर में उत्तम वर्ग में चलाना चाहिए। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, शायद पेज नंबर 198 है जहां सातवां अधिकार प्रारंभ हो रहा है। इसमें पंडित जी ने हेडिंग दिया है, जैन मतानुयायी मिथ्या दृष्टियोनु स्वरूप। जैन मतानुयायी, जैन मत को मानते हैं तो भी मिथ्या दृष्टि है, ऐसा बोलो कौन लेखक लिख सकता है आज के जमाने में? जो हमारे धर्म को माने, इस्लाम को माने तो भी वो मिथ्या दृष्टि है, हिंदू धर्म को माने तो भी वो मिथ्या दृष्टि है। यानी ये गुरुदेव जो बार बार कहते हैं कि जैन धर्म ये पंथ नथी, वाड़ो नथी, संप्रदाय नथी, आ तो वस्तुनो स्वरूप छे, तो उसी कसौटी में अपन इसको कसे हैं कि टोडरमल जी की दृष्टि अथवा जैनाचार्यों की दृष्टि, ये बात अकेले टोडरमल जी ने इसमें लिखी है ऐसा नहीं है। समय सार में भी जो आत्मा को नहीं जानता, स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है, जैसा कि अभी प्रसाद सिद्धोपाय में भी अपन ने सुना 21वीं गाथा के व्याख्यान में, कि भले व्रत पाले ग्यारंग नौ पूर्व जितना ज्ञान हो, वो तो सब जैन शास्त्र ही है ना, ग्यारंग नौ पूर्व, तो भी मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूं ऐसी दृष्टि के बिना सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। और नौवें गृहक जाने योग्य बंध परिणाम, ऐसा एक शब्द आया था, क्या मतलब है? नौवें गृहक जाने योग्य बंध परिणाम, यानी ऐसा अति मंद कषाय रूप स्वभाव होवे कि जिससे उसको नौवें गृहक में जन्म लेने वाली देवायु का बंध होवे, ऐसा परिणाम विशुद्ध परिणाम करे। करे क्या, वो तो होने वाला होता है, कोई हाथ में थोड़ी है करना, अपन लोग कर सकते हैं। अभी तो सोलहवें स्वर्ग से ऊपर वो तो श्रावक होवे, पंचम गुण स्थान से श्रावक होवे, वो सोलहवें स्वर्ग तक जाते इस काल में। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तय तय चय नरजन्म पाए मुनि भय शिव जावे। तो वो परिणाम होने पर भी उसको मिथ्या चारित्र है, गजब बात तो ये है। बाहर से देखो तो जैसा आचरण जिनेन्द्र भगवान के चरणानुयोग शास्त्रों में कहा गया है, पंच महाव्रत का पालन, 28 मूल गुणों का पालन, वह सब बिल्कुल वैसा ही है, तो भी मैं ये क्रिया का करने वाला हूं, ऐसा वो जड़ की क्रिया में अहम पना हुआ तो एकड़ा बिनाना मींडा हो गया है? आज तो इसमें अस्ति और नास्ति दोनों से आया कि एक के साथ में शून्य होता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। शून्य तो शून्य है, मगर अगर किसके बगल में बैठा है, एक अंक के बगल में बैठा हुए तो शून्य का मतलब 10 हो जाएगा, एक को मिला के 2 के बगल में बैठा हो तो 20 हो जाएगा, अरे 2 शून्य बैठ जाए तो 100 हो जाएगा है। तो सम्यक दर्शन के साथ में जड़ की क्रिया भी बैठी हुए, क्या बोला? सम्यक दर्शन के साथ में जड़ की क्रिया वो शून्य है, जड़ की क्रिया वो आत्मा की नहीं है, आत्मा उसका कर्ता भोक्ता नहीं है, उसमें पाप नहीं होता, उसमें पुण्य नहीं होता, उसमें धर्म नहीं होता, तो जीरो हुई ना। तो सम्यक दर्शन के साथ में जड़ की क्रिया बैठी हुए है तो भी वो सम्यक चारित्र नाम पाती व्यवहार से है। परलक्षी ज्ञान थोड़ा भी ज्ञान होवे, नमोकार मंत्र भी मुश्किल से बोल पावे, पांच परमेष्ठी का नाम भी याद नहीं रहे शिवभूति मुनि जैसा, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ में होवे तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, गजब है। तो ऐसा क्यों है? और आज तक समझ लीजिए इतना शास्त्रों का अभ्यास करने पर भी सम्यक तो क्यों नहीं हुआ? इसका समाधान ये सातवां अधिकार में मिलता है। जैसा कि अपन सब श्रीमद जी का एक जो एक काव्य है, यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लयो, फिर मुख मौन रहो वनवास रहो, बहुत सारी लिस्ट है। और इसका एंड कहाँ किया? यह साधन बार अनंत करियो, तदपि कछु हाथ अजू न पड़ियो। कितना मार्मिक उनका भी चिंतन गहरा है। अनंत करियो, ये साधन बार अनंत करियो, एक बाजू कहे पात्र थवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य मति मान, ये भी है ना, पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्र आत्मिक ज्ञान, पात्र थवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य मति मान। हे बुद्धिमान पुरुषो, पात्र होने के लिए ब्रह्मचर्य का सेवन करो, ये भी श्रीमद जी का वाक्य है। और इधर यह साधन बार अनंत करो, तदपि कछु हाथ हजू न पड़ियो। अब दोनों वाक्य हैं तो कैसा मेल बिठाना? तो श्रीमद जी ने खुद उसका फार्मूला दिया है, जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझ में उते, व्यवहार का कथन है। ब्रह्मचर्य इत्यादि का स्वभाव व्यवहार का कथन है। तो सातवें अधिकार के आधार पर ही अपन आठ दिन लगभग चर्चा करेंगे। जब बीच में वो क्रिया परिणाम अभिप्राय वाला टॉपिक आएगा तो उसको डिटेल करेंगे। तो वहां तक पहुंचने के लिए संक्षेप में थोड़ी चर्चा अपन करते हैं। जो बातें सामान्य हैं सब जानते हैं कि भवतरु संसार रूपी वृक्ष है, जिसमें दुख रूपी फल फलते हैं, चार गति में जन्म मरण दुख है। उसका मूल या उसकी जड़ क्या है? जड़ के आधार पर ही वृक्ष खड़ा रहता है, जड़ से ही उसको खुराक मिलती है, मूल से ही उसको जो खाद पानी है वो जड़ में से लेता है, ऊपर पत्ते पे छिड़को तो कुछ नहीं होता है। तो मिथ्यात्व ही संसार की जड़ है, इसलिए टोडरमल जी कहते हैं तेने करी निर्मूल हवे करिए मोक्ष उपाव, उसको निर्मूल कर दो। किसको? संसार रूपी वृक्ष को निर्मूल कर दो, यानी उसकी मूल यानी जड़ को काट दो तो वृक्ष सूख जाएगा। तो जड़ को काटने का मतलब मिथ्यात्व का अभाव करना। अब देखिए 45 वर्षों तक एक ही धुन कि यथार्थ निर्णय करो, समझो, तत्व समझो, समझ के बिना ये जीव एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। अरे लोग व्यवहार में भी है, गाड़ी चलाना है तो समझो तो पहले कि क्या चीज है, कैसे स्टार्ट होती है, कैसे कंट्रोल होती है, कैसे बैलेंस बनाते हैं, उसको पहले उसका समझ तो यथार्थ होनी चाहिए। तो इसलिए इस अधिकार की अपन चर्चा करते हैं। हवे जे जीवो जैन छे तथा जिन आज्ञाने माने छे तेमने पण मिथ्यात्व रहे छे। ये पण क्यों लगाया? तेमने पण मिथ्यात्व रहे छे, यानी बीजाओं ने रहे छे, ये तो बात सामान्य बात छे, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रसंग में थोड़ी मैं चर्चा आपसे करूं कि इस शास्त्र में चौथे अध्याय से लेकर सातवें अध्याय तक चार अध्याय हुए, चार पांच छह सात, उसमें मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन है। अभी मैं कुछ दिन पहले इधर आया था जून महीने में, भाईंदर तो वहां पे तीन दिन ये चौथा और सातवां दोनों की कंपेरेटिव स्टडी की थी। तो चौथे अध्याय में भी सात तत्व संबंधी भूल है और सातवें अध्याय में भी सात तत्व संबंधी भूल है। क्या फर्क है दोनों में? कि जो चौथे अध्याय में है वो भूल अनादिकाल की है, वो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, मक्की को, मच्छर को, ख्याल में आया ना, वो उसमें हिंदू मुसलमान का भेद नहीं है। प्राणी मात्र को, जिस जीव को आत्मबोध नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, ऐसे सब जीवों को, चाहे वो एक इंद्री हो, चाहे पंचेंद्री हो, चाहे महातीव्र पापी होवे और चाहे नौवे ग्रिवेक जाने वाला द्रव्यलिंगी मुनि होवे, अग्रहित मिथ्यात, अग्रहित यानी जिसको कभी नया ग्रहण नहीं किया, जब से आत्मा है समझ लो अनंत 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 काल पहले तक, एक आया था कल में गुरुदेव का व्याख्यान, वहां 13वीं गाथा पे देवलाली में चलता था तो मैं सुनता था, क्योंकि मैं जो सुबह 9 बजे आया बाहर से तो तुरंत वो चालू किया। गुरुदेव बोले अनंत को अनंत से अनंत बार गुणा करो। उन्होंने वर्ग समझाया, वर्ग स्क्वायर है, वर्ग किसे कहते हैं? तो गुरुदेव ने दाखला दिया, पांच में पांच का गुणा करना तो उसको 25 बोलते हैं, तो वो पांच का वर्ग हो गया 25। ऐसे अनंत में एक बार अनंत का गुणा करो, फिर दूसरी बार करो, फिर तीसरी बार करो, फिर चौथी बार करो, ऐसे अनंत में अनंत का अनंत बार गुणा करो तो वो अनंत वर्ग है। इतने आकाश के प्रदेश हैं, समझ में आया? इतना क्षेत्र विस्तार अलोकाकाश का, बोले सोच है यार, क्या चीज है, कितना गजब का है ये जैन दर्शन का भूगोल का वर्णन भी। अपन काल में लगाओ कि अनंत 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 काल बीत गया, आत्मा कब से है? कभी कोई बिगनिंग पॉइंट है कि यहां से चालू हुआ संसार, यहां से चालू हुआ? ऐसे मुंबई का इतिहास देखे तो भाई 1000 बरस पहले कोई यहां आया हो, टापू था, समुद्र था, उसने थोड़ा बहुत समझ लो यहाँ झोपड़ी बना ली, फिर धीरे धीरे बस्ती बन गई, ख्याल में आया ना? तो 1000 वर्ष पुराना भारत वर्ष का समझ लो, 5000 वर्ष पुराना, 10000 वर्ष पुराना। आत्मा का क्या हिस्ट्री है कि अनादि से है और जब से है तब से आत्मा को भूला हुआ है, ये और विचित्र बात है। तो आत्मा की भूल ये अनादि काल की है, वो उसका वर्णन चौथे अध्याय में, उसे अग्रहित मिथ्यात कहते हैं। वो कब से कब तक रहता है? तो अनादि से तो है ही, वो कब तक रहेगा? अनंत काल तक। अनंत काल तक तो जिसका रहने वाला हो, कोई अभागा होगा, अनंतानंत सिद्ध भगवंतों से अनंतवा भाग अभव्य राशि। अभव्य राशि कितनी है जानते हैं आप? जितने सिद्ध भगवान हैं उसका अनंतवा भाग, भाग समझते, अनंतवा हिस्सा, मतलब उतनी छोटी है, कम। सिद्ध भगवान तो अनंत जीव है, अनंत सिद्ध भगवंतों का भी अनंतवा भाग अभव्य राशि। उनकी अपेक्षा देखा जाए तो मिथ्यात्व अनादि अनंत है, है? और भव्य राशि की अपेक्षा देखा जाए तो अनादि तो है पर अंत है, शांत है, अनंत नहीं। तो कब कब तक रहेगा? सम्यक दर्शन के एक समय पहले तक, करण लब्धि के अंतिम समय तक। ऐसा है, दर्शन मोनी का उपशम हो तो उपशम सम्यक होता है सबसे पहले, उसके पहले तक मिथ्यात रहता है, ऐसा ये अग्रहित मिथ्यात है भाई। फिर पांचवें अध्याय में जो मनुष्य गति में उत्पन्न हुए अब, लेकिन जैन कुल नहीं मिला, तो दुनिया भर के समझ लो ईश्वर क्या करता है, ईश्वर भोगता है, अपन ऐसे जो जगत में मान्यताएं चलती हैं, ये एकांत नित्य है, एकांत अनित्य है, एकांत क्षणिक है, ऐसा इत्यादि इत्यादि, वो अन्य दर्शनों की मीमांसा है, तो वो गृहित मिथ्यात्व हुआ, वो नया ग्रहण किया है, वो मनुष्य पढ़ने में आकर के सीखा है। छठवें अध्याय में देखो उनका जो क्या बोलते हैं रेडियस है वो छोटा होता जाता है। चौथे अध्याय में जो मिथ्या दृष्टि है वो अनंत अनंत जीव राशि है, मनुष्य भी है, देव भी है, नारकी भी है, त्रिरंची भी है, समझ में आया, एक इंद्री से पंचेंद्री तक है, तो कितना बड़ा क्राइटेरिया है चौथे अध्याय वाले का। तो पांचवें वाले में जो चौथे में जो मिथ्यात्व है वो तो पांचवें वाले को है ही, उसके साथ में एडिशनल उसको और सपोर्ट करने वाला छह ढाला इसके लिए बहुत बढ़िया है। आप लोगों ने पढ़ी होगी, यहां तो चली होगी है, उसमें आता है जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। चिर दर्शन मोह अनादि काल के दर्शन मोह को और मजबूत करे, पुष्ट करे, वो गृहित मिथ्यात्व होता है। वो अपने आप में कुछ नहीं है, जैसे आपने ये दीवार बनाई तो पहले ईंट से ईंट जोड़ के दीवार बनाई, फिर बाद में ये मार्बल लगा के या सीमेंट लगा के उसको और मजबूत कर दिया। अकेली सीमेंट थोड़ी खड़ी करते हैं, पत्थर की बनाते, फिर उसके ऊपर और मार्बल लगा देते, पेंटिंग कर देते, ये कर देते। इसी तरह से सात तत्व संबंधी भूल गुरुदेव ने थोड़ा इशारा किया था सात तत्व के स्वरूप का अभी है आनंद। देखो गुरुदेव जीव तत्व को जीव नहीं बोला, आनंद तत्व छे, आत्मा आनंद स्वरूप छे, ये जीव हुआ, ये आनंद से भिन्न बाकी है सब अजीव हुए, आनंद से विरुद्ध वो असल तत्व हुआ। ऐसी व्याख्या ध्यान देने लायक थी वो बात, आनंद से विरुद्ध जो है यानी दुख रूप जो है वो आश्रयबंध तत्व है, सुखी होने का जो उपाय है वो सम्मरण देना तत्व है, और परिपूर्ण सुखी हो गया वो मोक्ष तत्व है। एक दो लाइन में कितने शॉर्ट में और बोलचाल की भाषा में उन्होंने सात तत्व का स्वरूप बताया तो वो भूल तो जीव की है ही, पर उसमें भगवान मेरा भला कर देगा, भगवान मुझे उद्धार कर देगा, या अनेक प्रकार की जो बातें हैं आज दुनिया में उसी का मार्केट ज्यादा है तो उसको गृहित मिथ्यात्व बोला। जैनेतर मत अन्य दर्शनों में कोई कोई ऐसा लगता है अपने अपने धर्म को तो सभी सच्चा कहते, दूसरे धर्म को मिथ्या कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम उनको मिथ्या बोलते वो तुमको मिथ्या बोलते, ये बड़ी प्रॉब्लम है देखो भैया सुखी होने का उपाय तो सबके लिए एक सरीखा है, दुखी होने के कारण भी सबके लिए एक सरीखे, समझ में आया। क्रोध से दुखी होता है, मान से दुखी होता है, मिथ्यात्व से दुख होता है, तो हिंदू क्रोध से दुख होगा, जैनी क्रोध से दुखी होगा और मुसलमान सुखी होगा। बोलो जो चीज हमारे लिए दुख का कारण है वो सबके लिए दुख का कारण। जय आपने छह डाला देखो, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, ऐसा नहीं लिखा जे त्रिभुवन में जैन 5 लाख के 10 लाख के 1 करोड़, जैन का नाम नहीं लिया, किसका नाम लिया, जीव अनंत, अब जीव में सब आ गए। तो ये तो प्राणी मात्र के सुखी होने के उपाय का विधान है वास्तव में जैन धर्म तो, इसलिए ये नियम जो जैन कुल में पैदा हुआ है उसी के ऊपर लागू होगा और दूसरे के ऊपर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, है? तो अन्य दर्शनों में जो एकांतवाद विपरीत एकांत विनय संशय अज्ञान ये 5 तरह का गृहित मिथ्या है। फिर छठवें अध्याय में और बर्तुल छोटा हुआ थोड़ा, तो उसने जैन कुल में तो जन्मा पर सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान नहीं हुई, तो कुगुरु को देव में फंस गया, दूसरे चक्कर में फंस गया। बड़ा आश्चर्य होता है और दुख भी होता है, जैसे अपने देवलाली में बहुत सी पार्टी ग्रुप ऐसे आते हैं यात्रा वाले, तो फोन करते हैं सब एक रात रुकेंगे, फिर क्या प्रोग्राम है? फिर शिरडी जाना है। गचबंता जावे, मांगी तुंगी जावे तो भी दिल को राहत मिलती है कि हाँ भाई ये थोड़ी सही जगह जा रहा है। इन दुनिया में क्या है कि भीड़ जहां होती है ना तो उसका अट्रैक्शन होता है, हाँ? तो कौन देव, गुरुदेव ने बहुत बढ़िया बात कही अभी, तो अनंत देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, तो भगवान की मूर्ति देखता है तो भी अनंत भगवान है ऐसा मान करके भक्ति करता है। ज्ञान में है कि ये तो मूर्ति है, लेकिन भक्ति में हे देवादि देव, हे शांतिनाथ भगवान, हे आदिनाथ भगवान, तो आप अनंत ज्ञान संपन्न हो, अनंत चतुष्टयवंत हो, ऐसा थोड़ी बोलता कि तुम तो पत्थर की मूर्ति हो, ऐसा बोला गुरुदेव ने? ऐसा बोलता होगा निश्चय से? ऐसा बोलता है निश्चय से? तो मैं देव हूँ, व्यवहार से तुम देव हो, निश्चय से तो तुम भी पत्थर हो, मैं तो चैतन्य हूँ। भैया भक्ति में व्यवहार की ही भाषा चलती है, लेकिन वो व्यवहार परमार्थ का पोषक होना चाहिए। एक होए तृण काल मां परमारत्नो पंथ, प्रेरेते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत, उसका पोषण करे, व्यवहार की ओर ले जाए, परमार्थ को दिखाने वाला हो, परमार्थ को बताने वाला हो, ये सब समझने लायक बात है। तो छठवें अधिकार में कुगुरु कुदेव को धर्म की मान्यताएं श्रद्धा जिनको है, जैन कुल में जन्म लेने पर भी वीतराग देव की श्रद्धा नहीं है, अन्य देवों की श्रद्धा है, उसको उन्होंने छठवें अध्याय में रखा। सातवें में और गहरी और बारीक बात है, इसमें कोई कुगुरु कुदेव की चर्चा नहीं है, ध्यान देना जरा। इसमें तो जो जीव जैन छे तथा जिन आज्ञा ने माने छे तेमने पण मिथ्यात्व रहे छे। अब मुझे ये आश्चर्य होता है कि जिन आज्ञा को माने और मिथ्या दृष्टि होवे, ये दो विरुद्ध बातें कैसे संभव है? एक बात तो ये प्रॉब्लम जिसका आज अपन सल्यूशन खोजेंगे, समाधान खोजेंगे इसका, क्योंकि आत्मानुशासन में 10 तरह के सम्यक्त बताए, उसमें एक आज्ञा सम्यक्त नाम का भी सम्यक्त है कि जिनेन भगवान की आज्ञा मानना, जिन वच में शंका न धार, वृष भव सुख वांछा भाने, निशांकित अंग है, निशांकित नेकांक्षित, तो भगवान की वाणी में प्रमाण वचन और उसमें क्या शंका करने की बात है, तो जिन आज्ञा को मानता है, तो या तो जिन आज्ञा को माने तो या तो वो सम्यक दृष्टि होगा, और अगर नहीं आज्ञा को माने तो वो मिथ्या दृष्टि होगा। समझ में आया? अगर मिथ्या दृष्टि है तो जिन आज्ञा के विरोधी में जाएगा। दो बातें एक साथ कैसे चलती कि जिन आज्ञा को माने तो भी मिथ्या दृष्टि, ठीक है? तो एक थोड़ी समझ लो, एक आज्ञा मानना किसे कहते? प्राय मैं ये उदाहरण सब जगह दिया करता हूँ, आप लोगों ने भी प्राय सुना होगा, शॉर्ट में कहूंगा। एक सेठ के यहाँ एक नौकर था, हाँ, देहात से बुलवाया, गांव देहात में खेती बहुत है, तो एक लड़के को बुला लिया, थोड़ा बहुत काम सिखा दिया उसको, झाड़ू कैसे लगाना, प्लेट बर्तन कैसे साफ करना, कैसे रखना बराबर, महीना दो महीना में ट्रेंड हो गया। एक बार सेठ के घर में बहुत समझ लो बड़े ग्रेट वाले मेहमान, वीवीआईपी मेहमान आए, हैं बेटी की शादी का रिश्ता पक्का करने के लिए। अब बोलो इससे बड़ा वो कौन होगा महान दुनिया में? सेठ जी को याद नहीं रहा, ध्यान में नहीं रहा, तो भोजन करने के बाद में बैठे तो नौकर को बोला, अरे रामू जरा पान तो ले आ। अब वो गया बाहर और पान के वो जो होता है छोटी दुकान, वहां से 10-20 पान लेकर के कागज में बांध के ले आया और ऐसे सबको देने लगा। अब सेठ जी ने कहा, यार ये तो मामला बहुत गड़बड़ हो गया कि इस तरीके से पान दिया जाता है क्या, ये लोग क्या सोचेंगे, ऐसा बहुत उनको अंदर में फील हुआ, लेकिन उस समय कुछ बोल नहीं पाए। अब जब मेहमान लोग चले गए तो उन्होंने नौकर को अच्छी फटकार लगाई, उसकी क्लास ली, डांट भी लगाई, फिर वार्निंग भी दी, ध्यान रखना कोई भी चीज मंगाए तो तस्तरी में बराबर साफ करके और ढंग से उसको देना चाहिए। बेचारा रह गया, साहब गलती हो गई, माफ कर दो, सब माफी वाफी मांग ली, चलो। अब 15-20 दिन बाद उस सेठ जी तो भूल गए, नौकर को तो याद था, तो सेठ जी को कहीं बाहर जाना था तो उनने कहा, अरे रामू जरा मेरे जूते तो ले आना। वो जिस विधि से उन्होंने बताया था उसी विधि विधान से बराबर तस्तरी प्लेट बड़ी लेकर के और उसको साफ करके और जूते चमका के और हाथ में ला करके, लीजिए ये क्या करता है, ऐसा आप ही ने तो कहा था। अब अपन को इसमें से केवल इतना विचार करना है कि नौकर ने सेठ की आज्ञा मानी कि नहीं मानी। अपनी तो समस्या ये है जिन आज्ञा को मानता है, है? भैया शब्दों में आज्ञा मानना को मानना नहीं कहते। इस पे हमने गुरुदेव के व्याख्यानों में बहुत सारे उदाहरण सुने हैं। नई नई बहू आई तो दूसरी बार जब ससुराल में आई, पहली बार तो बहुत रिस्पेक्ट और बहुत प्यार दिखाते, फिर बाद में आई तो हाथ में झाड़ू थमा दी, कचरा निकालो सब, ये कचरा कहाँ फेंकूं। उस समय ये क्लीन इंडिया वाला नहीं चलता था तो वो तो बालकनी में तो सड़क पे ही फेंका जाता था, तो खड़िया वो हमारे यहाँ छज्जा बोलते हैं उसको, बालकनी जो सड़क पे खुलती है ना, तो छज्जे वैसे फेंक दे बाहर। ध्यान रखना आदमी देख के कूड़ा फेंकना, मानस जोई ने ऐठा नाक जो, ऐसा गुरुदेव से सुना है, मानस जोई ने ऐठा नाक जो। तब वो खड़ी है, 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, अब आई नहीं अंदर, तो सास जी को बहुत चिंता हुई कि ये कैसी लड़की है, नई नई लड़की घर में, हाँ आई पहली बार आई, हमने तो सच सोचा था कि बड़ी रुचि वाली है, मुमुक्षु है, तो बड़ी सच्चरित्र संस्कारी है, ये छज्जे पे खड़ी हो गए क्या करती। तो बेटा क्या हुआ, आपने कहा था आदमी देख करके कूड़ा फेंकना, अभी तक कोई आदमी नहीं निकला इधर से, ऐसे आज्ञा मानी के नहीं मानी, ऐसे एक दूनों हजार मिलते हैं, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, है? शब्दों के अनुकरण को आज्ञा नहीं कहते, ये व्यवहारभाषी जीव जो है वो शब्दों का अनुकरण करता है। उसमें कहा कि भगवान के दर्शन करना, पूजन करना, व्रतशील संयम पालना, चरणान योग में क्रिया की प्रधानता से धर्म है, ऐसा बताया तो देखो उसमें लिखा है, देखो उसमें लिखा है, ऐसा वो भी शास्त्रों के वाक्य बताता है, निकालें शास्त्र में लिखा है। तो आप जानते हैं कि न्याय ग्रंथों में उपादान और निमित्त दोनों कार्य के हेतु कहे गए, निमित्त को भी कार्य का हेतु कहते, तो देखो शास्त्रों में लिखा है। और आश्चर्य की बात तो ये हुई, आप लोगों को वो बात किसी को मालूम है कि नहीं, मुझे पता नहीं, गुरुदेव श्री के वियोग के बाद जब गुरुदेव चले गए तो अपने यहां से भी तो जो तर्क दिगंबर समाज के पंडित देते थे तो एक ग्रुप ऐसा खड़ा हुआ कि उसने भी वही तर्क देना चालू किए, ख्याल में आया ना। देखो न्याय ग्रंथ एक ही कार्य से कारण से कार्य होता है, ये मानना एकांत है। अकेले उपादान से होता है ये मानना एकांत है। उपादान निमित्त दोनों मिलकर के कार्य की, और ये भाषा बिल्कुल न्याय ग्रंथों में हूबहू ऐसी आती। अलंग शक्ति भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा, हेतु द्वय से उत्पन्न होने वाला कार्य। तो सामने वाले ने लिखा है तो अभी तुम नहीं मानते, क्योंकि गुरुदेव कहते भैया जो उपादान कारण है उसको कारण कहना ये निश्चय नहीं का कथन है, ये यथार्थ निरूपण है। और जो स्वयं कार्य रूप तो परिणमता नहीं है लेकिन कहा जाता है कि इससे हुआ, वो कहने का कारण है, वो उपचरित कारण है। तो फिर व्याख्याएं बदलने लगे, अपनी मनमानी व्याख्यान करने लगे, ऐसा ऐसे इस तरफ बात चली जाती। ये मैंने वो बात क्यों यहाँ छेड़ी, उसको यहाँ क्यों याद किया, कि शास्त्रों में तो शब्द लिखे हैं, मर्म तो ज्ञानी के हृदय में होता है, ऐसा है ना श्रीमद जी का, है शास्त्र में तो खाली शब्द है, तो वितरागता पोषक होने चाहिए। तो आज्ञा का भाव नहीं समझा तो वास्तव में देखा जाए तो उसने आज्ञा नहीं मानी है। अभी मैं विदिशा में था तो हमारे एक परिचित, समझ लो बहुत अच्छे विद्वान परिचित मित्र, डायरी लिखे हुए थे, धवला जी के 10-20-50 उनने सेंटेंस लिख रखे थे, बोले आप इसका समाधान करो। तो क्या एक एक बात क्यों उन्होंने बताया, आज्ञा मानने के लिए मैं ये सब बातें कहता हूँ। जिन बिंब के दर्शन करने से निद्धति और निकाचित कर्म के भी खंड खंड हो जाते हैं, तो आप लोग तो कहते निमित्त से कुछ नहीं होता। इसमें लिखा है कि जिन बिंब के दर्शन करने से कर्म चकचूर हो जाते हैं। तो मैंने कहा भैया आज तुम ये समस्या उठा रहे हो, 50 वर्ष पहले गुरुदेव के व्याख्यान में सैकड़ों बार इसको कोट किया गया है। शिष्य पूछता है गुरुदेव से कि धवला जी में ऐसा आता है जिन बिंब के दर्शन करने से कर्म टूट जाते हैं, निद्धति निकाचित जो कभी खुलते नहीं है, जो कभी टूटते नहीं है, छूटते नहीं, वे भी खुल जाते हैं। भैया ये निमित्त की प्रधानता से कथन है, ये व्यवहार ने का कथन है, और व्यवहार ने में भी डिटेल में जाओ तो असद्भूत व्यवहार ने का कथन है। तो जिनागम में दोनों नयों से कथन होता है। अब जो जो व्यवहार ने से कथन है उसे ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से कहा गया है, ये फार्मूला लगाना चाहिए। तो उनको ऐसा लगता है कि ये सुनगढ़ वालों ने ये बातें सुनी नहीं कभी, उनने कभी पढ़ी नहीं होंगी। ठीक है, हमने नहीं पढ़ी, आपने नहीं पढ़ी, गुरुदेव ने तो सब पढ़ी और उनके दिमाग में तो ज्ञान में सब बातें थी, और उन्होंने प्रवचनों में अन्य ग्रंथों में जो बात वो कह रहे हैं उससे विरुद्ध आशय निकल सकता है ऐसे कोटेशन दे दे करके उसका समाधान किया। भैया वो निमित्त की अपेक्षा कथन है। तो जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ, दुनिया में भी जो व्यवहार से कथन किए जाते हैं तो उसको जैसे है वैसे ही माना जाता है। पड़ोस में कोई मुस्लिम भाई रहे तो अपन उसको भी चाचा कह देते हैं तो वैसे ही चाचा माना जाता है। मामा के गांव में, मामा के पड़ोस में जो रहते हैं उनको भी मामा बोल देते हैं तो क्या उसको मामा माना जाता है? और नहीं मानते हैं तो क्या बोलना भी नहीं चाहते हैं क्या? बोलते भी नहीं है क्या? बोलना लेकिन मानना नहीं, इस फार्मूले पे दुनिया चलती। बोलो आप, व्यवहार नहीं की भाषा का प्रयोग करना लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा श्रद्धान साथ में रखना, इस फार्मूले पे तो जगत का व्यवहार भी ऐसे ही चलता है। फिर तो जिनागम की बात, कहने का आशय यह है कि आज्ञा का आशय नहीं समझा इसलिए वास्तव में आज्ञा नहीं मानी। देखो 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने वाले ने भी आज्ञा नहीं मानी है, वो 9वें गृहयज्ञ जाने वाले ने भी आज्ञा नहीं मानी, और एक नारकी 7वें नरक में जो पड़ा है सम्यक दृष्टि, वो जिनेन भगवान की आज्ञा मानने वाला है। पनासी दास जी ने तो सम्यक दृष्टि की ऐसी बढ़िया महिमा की है, वेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित्त वयो जिमी चंदन, केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। जिनेश्वर के लघु नंदन, छोटा बेटा ज्यादा प्यारा होता है, हैं? लघु नंदन, बेटे को संस्कृत में नंदन बोलते हैं। नंदन क्यों? उसको देख करके माँ बाप का हृदय खुशी से फूल जाता है, तो खुशी उत्पन्न करने वाला होने से उसको नंदन कहते हैं। केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन, सत्य स्वरूप सदा जिन के प्रगटो अवदात मिथ्यात निकंदन, शांत दशा तिन की पहचान करे कर जोरी बनारसी बंदन। सोचो आप, शंभु रमण समुद्र में पड़े हुए जो असंख्यात त्रयंच जीव हैं, उन पे भी वो बनारसी दास जी का नमस्कार पहुंच रहा है, और नरकों में जो सम्यक दृष्टि जीव पड़े हुए हैं, अभी मार काट चल रही है, उनको भी उनका नमस्कार पहुंच रहा है। परोक्ष रूप से समझ में आया तो वो आज्ञा मानने वाले हैं, वो क्योंकि भगवान आत्मा शरीर आदि से भिन्न, राग आदि से भिन्न, ऐसा अनुभव करो ये जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है, तो उसको मानते हैं। ये हो गया समाधान। जे जीवो जैन छे तथा जिने आज्ञा ने माने छे तेमने पण मिथ्यात्व रहे छे, तेनु अही वर्णन करिए छे, कारण के मिथ्यात्व शत्रु नो अंश पण बुरो छे, तेथी ए सूक्ष्म मिथ्यात्व पण त्यागवा योग्य छे। दो बातों की चर्चा करनी, मिथ्यात्व का अंश है और सूक्ष्म मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अंश होता है कि थोड़ा चला गया, थोड़ा बाकी है, ये चारित्र में होता है, ये जो है चारित्र में होता है। गुरुदेव ने कहा था ना, उसमें आया था एक शब्द, थोड़ा भी त्याग होवे, सम्यक दर्शन के साथ में थोड़ा भी त्याग होवे तो वो चारित्र कहलाता है। तो गुरुदेव ने जानते हैं आप, थोड़ा भी त्याग होने के, त्याग शब्द का क्या अर्थ किया, कि राग का अंश, थोड़ा भी अंश का अभाव होवे, ये त्याग का मतलब ये कि आलू खाना छोड़ दिया, कि हरी छोड़ दिया, कि रात्रि में भोजन छोड़ दिया, ये तो सब बाह्य व्यवहार की बात है भैया, जो हार्डवेयर है क्रिया की बात है, वो हार्डवेयर है। चरणान योग हार्डवेयर का ग्रंथ है, द्रव्यान योग सॉफ्टवेयर का ग्रंथ है कि नहीं। वो आपकी फीलिंग, वो जो आपकी थिंकिंग कैसी होना चाहिए, फीलिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी बात करता है। तो राग का अंश भी थोड़ा भी अभाव हुआ तो मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है, तो इसलिए उन्होंने बाद में सूक्ष्म मिथ्यात्व शब्द का प्रयोग किया। वास्तव में तो मिथ्यात्व होता है तो पूरा होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, उसमें इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, समझ में आया। लेकिन समझाने के लिए देखो, पूरी समझ लो, आग लगी हो भयंकर तो खतरनाक है, जो कोयला जलता है ना तो उसकी एक चिंगारी निकलती है, हैं? तो वो तो रखने ला, उसमें तो कोई नुकसान नहीं है ना, ये अंश भी बुरा है का ये मतलब है, समझ में आया। एक गिलास भर के किसी ने जहर दे दिया तो वो तो नुकसानदायक है, एक बूंद में तो कोई नुकसान नहीं है, है? 100-200 लीटर की एक वो हो गए टंकी बड़ी, उसमें 200-500 लीटर दूध भरा हो, मेहमान आने वाले हो, पार्टी होने वाली हो, अचानक समझ लो वो छिपकली जो है वो लड़ रही थी और उसका एक बूंद जहर उसमें गिर गया, डॉक्टर साहब क्या करना, वो जितना जितना गिरा है ना उतना निकाल के अलग कर दो बाकी तो इतनी कीमती चीज है, इतना महंगा है और बन गया है, मेहनत हो गई है, तो वो सारा दूध भी जहर हो गया कि नहीं हो गया। देखो मिथ्या, जहर की एक बूंद भी सारे भोजन को जहर बना देती है, बहुत मार्मिक बात है। ऐसे एक भी विपरीत मान्यता वो सारे शास्त्र ज्ञान को मिथ्या कर देती, वो मिथ्या शास्त्र ज्ञान है। और आचरण ये दूध है, ये शास्त्र ज्ञान ये दूध के समान है, आत्मज्ञान अमृत, क्या बोला, आत्मज्ञान अमृत है, शास्त्र ज्ञान दूध है, लेकिन उसमें मिथ्यात्व का जहर चला जाए तो वो शास्त्र ज्ञान भी जहर हो जाता है। ऐसे बाह्य चारित्र है तो सदाचरण है, व्रत है, शील है, संयम है, जो भी सदाचरण जिस भूमिका में होता है वो भी जीवन को पवित्र बनाता है, वो भी आत्मा के नजदीक जाने में हेल्प करता है, तो वो भी दूध के समान है। लेकिन उसमें एक शुभ भाव, वो दूध के समान है लेकिन उसमें मैं ये शुभ भाव का करता हूँ और ये शुभ भाव से मुझे धर्म होता है, ऐसा उपादेय बुद्धि का उसमें जहर मिल गया तो वो जहर का जहर हो गया पूरा। इसलिए कहा कि मिथ्यात बैरी का अंश भी बुरा है। 6 फुट का सांप हुए बड़ा अजगर है तो वो तो खतरनाक है ही, लेकिन एक सांप का बच्चा हुए जरा सा 6 इंच का तो वो तो घर में रखने लायक है, वो तो दूध पिला के पालने लायक है कि वो भी निकालने लायक, बोले समीर भाई इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात भी त्यागने योग्य। अभी इस सूक्ष्म मिथ्यात क्या होता है, ये जरा मजेदार बात है, समझने लायक पॉइंट है। सूक्ष्म मिथ्यात और स्थूल मिथ्यात, आज के जमाने में तो मामला थोड़ा पलट गया। अभी जैसे वो ये जो हमारे कई साथी, तो पहले मैं भी जाता था, अभी तो बंद हो गया, अमेरिका पकड़े जाते हैं ना, तो वहां क्रमबद्ध पर्याय की बात करो, भेद ज्ञान की बात करो, आत्मा की बात, सब बड़ी खुशी से सुनेंगे, आदर करेंगे। अरे साहब अहो भाव, ऐसी बात कभी सुनी नहीं, और कुदेव कुगुरु की बात करो तो वो बड़ी सूक्ष्म लगती है, ऐसा नहीं, वो उनको समझ में नहीं आता कि दोनों में क्या फर्क है, सब एक ही तो है, भगवान एक ही है सब सब। बहुत से लोगों को तो जिनेन्द्र भगवान में और अन्य जो हैं उनमें फर्क नजर नहीं आता है। नियम सार का सुबह मंगलाचरण मैंने पढ़ा था, तो इस सती परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान कथम तनु वशत्वान बुद्ध के शान यजे। आपके होते हुए जो मोह के वश में पड़े हुए हैं, ऐसे नाम लिखे बुद्ध हैं, केशव हैं, इत्यादि इत्यादि, मैं उन्हें क्यों पूजूं? ऐसा है। एक समझ लो, आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा और आप आगामी पीढ़ी को भी सही गाइडेंस दे सकते इस मामले में, क्योंकि आगामी पीढ़ी बहुत कंफ्यूज रहती है, या तो विपर्य में चली जाती है या संशय में रहती। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, तो न मेरी भावना है, मेरी भावना। वो जैन समाज की राष्ट्रगीत जैसा काव्य है वो। एक जुगल किशोर जी मुख्तार नाम के विद्वान हुए, कवि हुए, और उन्होंने बहुत सुंदर सरल भाषा में अपने साथ इसमें दिए जिनेन्द्र रचना में मेरी भावना, हमारे यहाँ तो बहुत पढ़ी जाती, तो उसमें आता है, सुनना तेरे ध्यान से। जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ए चित उसी में लीन रहो। ओहु बहु यही भाव भक्तामर काव्य में आते। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात, आप ही बुद्ध हो। त्वम संकरोसि भवनत्रय संकरत्वात, आप ही संकर हो। दातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात, आप ही ब्रह्मा हो। व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमसि, आप ही उत्तम पुरुषोत्तम, यानी ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, गणेश हैं, महेश हैं, विधाता हैं, सब यही हैं। लेकिन कौन? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, ये पहली शर्त है। ये किस, देखो भगवान तीर्थंकर देव जो होते हैं, जिसको आप तो बोलते हैं न्याय ग्रंथों में, आप तो बोलते हैं, उनके तीन विशेषताएं होनी चाहिए, तीन गुण कहो, वितराग सर्वज्ञ और हितोपदेशीपना। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ये हितोपदेशीपना। वेत्तारम कर्म भूवृताम, ये वितरागता। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ये सर्वज्ञता। वंदे तदगुण लब्धये, तो आप्त के लक्षण में तीन चीजें हैं, वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। उसको उन्होंने हिंदी में ऐसा रखा, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, यानी वितरागता, सब जग जान लिया, ये क्या हुआ, सर्वज्ञता, फिर सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया, ये क्या हुआ, हितोपदेशीपना। उसके बाद में ये लिखा, उनको, उन्हें आप बुद्ध कहो, गणेश कहो, विधाता कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो। गुरुदेव कभी कभी व्याख्या करते, राग द्वेष ने हरे एने हरि कहिए, आत्मा ने कषाय ने कृष करे एने कृष्ण कहिए, ख्याल में आया ना है? तो जगत को ऐसा भ्रम हो गया कि अपने यहाँ भी तो सभी देव को पूज्य का है, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, सभी को पूज्य का ना, सबके नाम अपने आते भैया। वो सभी देव हैं वो अलग चीज है, वो रागी द्वेषी हैं जो उनका स्वरूप जगत में कल्पित है वो अलग चीज है, और ये एक वितराग जिनेन्द्र सर्वज्ञ परमात्मा के ही यहाँ तो चार नाम बताए। इंद्र ने तो 1008 नामों से स्तुति की है, देखो नाम हजार हैं, व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति एक है। ये जगत के गले नहीं उतरता, ये सूक्ष्म मिथ्यात लगता है, समझ में आया? और पर्याय के सत्कारक जुदा हैं और द्रव्य के सत्कारक जुदा हैं, ये समझने में जगत को आज कब आज के युग में समझ लो गुरुदेव की कृपा से तकलीफ नहीं होती। तो कहने का आशय ये है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की चर्चा करना ये बड़ा महंगा हो गया है, है? और भेद विज्ञान कई लोग देखो, गीता में भी आत्मा की बात आती, उसमें भी भेद ज्ञान की बात आती, उसमें भी समय आ रही है, उसमें भी सब कुछ। अरे भैया, आत्मा की बात आ गई कि आत्मा शरीर से भिन्न है। मैं एक सही घटना सुनाता हूँ, 6वीं क्लास पढ़ता था तो हम तो हमारे जबलपुर शहर से ऐसे थोड़ा 10-12 किलोमीटर दूर रहते थे, एक नई समझ लो बस्ती डेवलप हो रही थी, हमारे पिताजी ने वहां दुकान खोली थी, आज समझ लीजिए हो गए होंगे कम से कम 60-70 बरस। तो हम तो वहां रहते थे, वहां ये सिनेमा घर वगैरह था नहीं, तो ज्यादा कभी जाना होता नहीं था। जब थोड़ा मिडिल स्कूल में 7वीं 8वीं में पढ़ने लगे तब ऐसा लगा कि नहीं नहीं अपने को भी सिनेमा देखने जाना चाहिए। तो एक बार छोटी उम्र में एक सिनेमा, जैसे गुरुदेव नाटक देखने जाते थे ना, तो एक सिनेमा देखने गए, तो उसके शुरुआत में ही एक बढ़िया दीपक जलता हुआ और ज्योति जलती हुई, और उसमें कमेंट्स उसके साथ में आत्मा अमर है। मैं कहूं यार ये बात तो हमारे शास्त्रों में भी आती, सब प्रवचन सुनते थे ना, तो ऐसा लगे ये आत्मा अमर है, देह मरने वाली है, देह से आत्मा भिन्न है, आत्मा कभी उसकी जो फिल्म की जो थ्योरी थी वो पुनर्जन्म के ऊपर थी, तो इसलिए उसने शुरुआत यहां से की थी। तो इतने खुश हुए, ये फिल्मों में भी धर्म की बात आती, फिल्मों में भी भेद ज्ञान की बात आती, लो तो ऐसे अन्य मत में भी उनमें भी भेद ज्ञान की बात आती, उनमें भी आत्मा की बात आती, क्या फर्क है दोनों में? ये सूक्ष्म मिथ्यात है, समझ में आए? विनय मिथ्यात है, ये विनय मिथ्यात, सभी देवों को समान मानना, सभी धर्मों को समान मानना, ये क्या कहलाता है? ये विनय मिथ्यात है, ये आज बड़ा सूक्ष्म हो गया। उसको पता नहीं है कि भैया अकेले शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, देखो बात तो यही है, पर उसके पीछे श्यादवाद का, अनेकांत का जो बैकग्राउंड है, शुद्ध न्याय का विषय, नौ तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति, नौ तत्व रूप परिणमित होते हुए भी जो एकत्व स्वभाव को नहीं छोड़ता। मैं उन लोगों से, कई लोग जो अपने मित्र लोग उधर की बात करते हैं, वैसी तो से जो बात गुरुदेव के व्याख्यान में आती है, जो दृढ़ता दृष्टि के विषय की, और साथ में जो पर्याय को भी साथ में लेकर के जो उसका ज्ञान कराते हुए चलते हैं, वैसी मिलती है आपको कहीं और, समझ में आया ना है? तो लोग जानते ही नहीं क्या फर्क है, स्वाध्याय नहीं है ना, स्वाध्याय करे तो पता पड़ेगा इधर में और उधर में क्या फर्क है। खैर ये तो मैंने वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बात की कि आज तत्व की ऊंची से ऊंची बात जो है वो सूक्ष्म नहीं रही, लेकिन जो देव गुरु शास्त्र के निर्णय की बात ज्यादा सूक्ष्म हो गई, लेकिन सिद्धांत के हिसाब से देखा जाए यहाँ पे सूक्ष्म मिथ्यात क्या है, ईश्वर जगत का करता है, भगवान भला बुरा करते हैं, ये स्थूल मिथ्यात, समझ में आया? कोई किसी को सुख दुख दे सकता है, ये स्थूल मिथ्यात्व है, और मैं अपनी पर्याय का करता हूँ परमार्थ से, ये सूक्ष्म मिथ्यात्व, ध्यान रखना, अभी थोड़ा ऊंचा डोज है ये, तो आप लोगों के लिए तो कुछ भी ऊंचा नहीं, यहाँ तो डेली चलता है, गुरुदेव की वाणी में सब बात आती है, तो यहाँ तो नया तो कुछ भी नहीं है, है? परद्रव्य जी मेरी पर्याय का कर्ता नहीं है, इसके लिए तो मैं ही मेरी पर्याय का करता हूँ, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। गुरुदेव इसकी कितनी प्रशंसा करते थे इस गीत की, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड निज रस में रमने वाला हूँ। तो जब जब ये प्रकरण आया तो गुरुदेव बराबर खुलासा करते कि आत्मा की पर्याय का कर्ता शरीर नहीं है, परद्रव्य नहीं है, तो आत्मा द्रव्य ही अपनी पर्याय का करता है क्योंकि पर नहीं है। लेकिन द्रव्य और पर्याय के बीच में अगर लकीर खींचना हो गए तो हरेक पर्याय अपने स्वकाल में अपनी योग्यता से अपने सटकारक से परिणमती है। त्रिकाली ध्रुव मात्र पिंड हूँ वृत्ति नहीं, वो सोगानी जी का है ना एक डायलॉग, परिणाम परिणम गया और मैं यूं का यूं रह गया। वाह, मैं यूं का यूं रह गया, यानी जो दृष्टि का विषय भूत चैतन्य ध्रुव तत्व है उसमें परिणमन ही नहीं है तो क्षणिक पर्याय का कर्ता कैसे होगा। तो क्षणिक पर्याय का कर्ता होने के लिए क्षणिक पर्याय रूप होना पड़ेगा। जैसे शरीर का कर्ता होने की क्या शर्त है कि तुम शरीर बनो, वो कहते ना भैंस का पति पाड़ा, गुरुदेव उदाहरण देते भैंस का पति पाड़ा, काय के लिए देते ये उदाहरण कि तुम जो भैंस का स्वामी बनना चाहेगा वो पाड़ा होएगा, वही स्वामी बनेगा उसका। तो तुम मकान के स्वामी बनते हो तो तुम पहले मकान बनो, शरीर के स्वामी बनते हो तो तुम जड़ हो जाओ। ऐसे क्षणिक पर्याय के स्वामी बनना है कि मैं उसका कर्ता भोगता हूँ तो समझ लो तुमने अपने को क्षणिक मान लिया, उसमें त्रिकाली द्रव्य रह गया दृष्टि में, ये सूक्ष्म मिथ्यात। समझ में आया, मुझे मिथ्यात का नाश करना है और मुझे सम्यक उत्पन्न करना है, ऐसा अभिप्राय। पर भावों की बात नहीं है, भाव तो ज्ञानी के ऐसे ही होते, ध्यान देना, परिणाम तो ज्ञानी के ऐसे ही होते, लेकिन अंदर अभिप्राय में अपने ज्ञायक स्वभाव को मिथ्यात का नाश करने वाला अथवा सम्यक्त को उत्पन्न करने वाला ऐसा दो पर्यायों का कर्ता माने तो सूक्ष्म मिथ्यात हो गया। पर्याय का भी कर्ता मानना, ये सूक्ष्म मिथ्यात की बात। अभी तो अपने पास है 8 दिन, आराम से चर्चा करेंगे, कोई ज्यादा उसमें घबराने की बात नहीं है। तो जैन कुल में जन्म लेने पर भी, जैन शास्त्रों का अभ्यास करने पर भी ये जीव को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, उसका कारण इसमें दिया। जिनागम मां निश्चय व्यवहार रूप वर्णन छे, तेमा यथार्थ नु नाम निश्चय तथा उपचार नु नाम व्यवहार छे। ये शॉर्टकट परिभाषा, तेना स्वरूप ने नहीं जानता अन्यथा प्रवर्ते छे ते अही कहिए चीये। तो चार तरह के मिथ्या दृष्टियों, जैन जैन भाष, जैनाव लंबी लिखा ना, जैन मताने आई, निश्चयाभाषी, व्यवहाराभाषी, उभयाभाषी, सम्यक्त के सन्मुख, ये चार प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की चर्चा इसमें आई है। इसी को कल अपन आगे बढ़ाएंगे, अभी समय हो गया इसलिए यहीं विराम लेते हैं।